समझते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है जलक्षणम प्रोक्तो पुंसा वर्णाभिव्यंजकम जगन्नाथ दृश्यते तत्र नैव विनिश्चिते। ये चार गुण जो हमने कहा ब्राह्मण वैश्य शूद्र के, इसमें यदि चारों वर्णों में से ब्राह्मण का स्वभाव इनमें से सदाचार संपन्न भगवत चिंतन करने वाले हों और उनमें विद्या अध्ययन इत्यादि का ज्ञान जिसमें गुण हो सदाचारी हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया। ये यदि गुण यदि दूसरी जगह भी देखे जाए अर्थात जो क्षत्रिय हैं वैश्य हैं या शूद्र में भी ये गुण यदि देखे जाए तो उनको ब्राह्मण ही मानो। कैसे मानो? एक लड़का था त्रेता जी की बात, वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में गया। उसके गुरु का नाम था गौतम, हर श्रुति गौतम ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऋषि के तत्ववेत्ता वेदों को जानने वाले। तो उस ऋषि ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? वो तुम्हारे पिता के अनुसार में गोत्र होता है। तो वो बोला, जैसे मैं तो नहीं जानता, जाओ पूछो मैया। तो मैया से गया पूछा और पूछ करके फिर आया, पूछाया तो हाँ तो तुम्हारा गोत्र क्या है बतलाओ। तो उसने कहा कि देखो हमारी मैया का नाम है जवाल, मैं उसका पुत्र हूँ सत्यकाम। युवावस्था में वो बेच्या थी, मैं बेच्या थी और किससे तुम पैदा हुआ ये मैं नहीं जानती, इसलिए ऋषि से यही कहना कि मैं अपनी मैया जवाला का पुत्र हूँ और युवावस्था में उन्होंने कैसे हमको किससे पेश हमारा धारण किया हमें मुझे मालूम नहीं, इसलिए आप मुझे जवाला सत्य कहा। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण जी जो गौतम थे बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा सच बात दूसरा ब्राह्मण के अतिरिक्त नहीं कहा। इसे सतर्कवादिता, ये है ब्राह्मण का लक्षण स्वभाव का, इसे तुम जरूर ब्राह्मण बालक है, मैं तुम्हें ये उपनयन देकर के अभी बेटा चयन कराता हूं। उन्होंने साथी साथों से और वो ब्राह्मण में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मर्षि वो तत्व के आकार हुआ। कहते हैं महाभारत में बहुत से इसके प्रमाण हैं। कहते हैं शूद्रो अभी सामाजे तो ब्राह्मणेव ब्राह्मणों अभी कामाजुपेत शूद्र। यदि शूद्र पिता और माता के कुल में जन्मा यदि कोई व्यक्ति हो किंतु उसमें ब्राह्मण के गुण हैं, तम दम से शिक्षा आर्य उदारता ब्रह्म तत्व को जानने की पिपाशा सबके साथ में मधुर व्यवहार झूठ नहीं बोलना, तो उसको ब्राह्मण निश्चित ही समझो। और ब्राह्मण में भी यदि ये काम आदि हिंसा प्राणिता इत्यादि हो तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जैसे रावण के पिता का नाम था, पितामह का नाम था पुलस्त्य ऋषि, उनके पुत्र थे विश्रवामुनि ब्राह्मण और उनका पुत्र ये रावण, किंतु उसको राक्षस कहा शूद्र से भी अधिक। यदि शूद्र यदि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहा जाता है तो ये मांस मछली कभी कहता था क्यों नहीं तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ने उसे आदर दिया, या हमारे वाल्मीकि जी ने उसे ब्राह्मण क्यों नहीं माना? महाभारत श्रीमद् भागवत भी ऐसा उसे कहा गया, जगत को गुणाले माना होने से उसका रावण हुआ। मत मांस सब खाता था, पिताजी का हरण करके ले आया, इसे वो ब्राह्मण नहीं हुआ, उसको राक्षस कहा, कहीं भी ब्राह्मण नहीं। यदि कहो विभीषण जी में तो ये सब गुण थे, उन लोगों का संस्कार नहीं था, किंतु वो भगवत भक्ति होने के कारण ब्राह्मण से भी बहुत ऊंचे हैं। जिन लोगों में भगवत भक्ति है, भगवान का भजन करते हैं, वो लोग बहुत ऊंचे ऊपर है। कहते हैं महाभारत में कहा गया कि मृगी श्री हरि ने उसे ऋषि श्रृंग पैदा किए, हिरणी से पैदा हुए। वो ऋषि श्रृंग थे। महाराज दशरथ के यज्ञ में वो आए, सुश्रेष्ठ यज्ञ में उन्होंने यज्ञ कराया और उनको ब्राह्मण माना गया। ब्राह्मण में भी कैसा बहुत उच्च कोटि का, तो ये कौन से जाति में रहे? ये ब्राह्मण माने गए सिंगी के वृद्धि से और कुश से कौशिक हुए। कौशिक इस कौशिक के पुत्र ही हमारे विश्वामित्र जी हैं। तो ये तो कुश से पैदा हुए, तो इनकी क्या जाति रहेगी? और वाल्मीकि जी थे, ये वाल्मीकि माने होता है दीमक होता है, उससे पैदा हुए। तो वो रामायण का लेखा और वो ब्राह्मण में परम उत्तम ब्रह्मर्षि भी माने गए, ये कैसे संभव हुआ? अरे मछुआरे की बेटी से व्यास का जन्म हुआ। व्यास का जन्म जानते हैं? मछुआरे की कन्या से, मछुआरे माने मछली मारने वाला, और उसे ये पैदा हुई व्यास जी। और वेश्या से पैदा, वेश्या के ऊपर थी उसे वशिष्ठ जी पैदा हुए, जो रामचंद्र जी के उनके वंश के पुरोहित थे। ये कैसे संभव हो गया? और कुंभ से खड़े से तो अवस्थ जी पैदा हुए। इनकी कौन सी जाति मानी जाएगी जिनको ब्राह्मण कहा गया? इसलिए ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, ब्रह्म तत्व को जो जानने वाला वो ब्राह्मण है। इसलिए कहते हैं जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, सब लोग शूद्र ही जन्मा होते हैं है? और संस्कारात बीजो, संस्कार से वो ब्राह्मण कैसे इत्यादि के द्वारा, उपमित इत्यादि के द्वारा संस्कार देने पर वो क्या कहलाता है? बीज माने दूसरा जन्म, बीज दूसरा जन्म। माता पिता से सब जन्म होता है, उसमें सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मणों का संस्कार हो तो वो भी शूद्र ही है, पीछे से उनका स्वभाव और विचार देकर के उनको माना जाता है कि ये ब्राह्मण है या क्या। और वेद पाठात भवेत विप्र, वेदों का संस्कार होने के बाद में वेदों का जो पाठ करते हैं उनको कहते हैं विप्र। और ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले जो जगत की सृष्टि करने वाले जो परब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। तब तो तुलसीदास जी ने वो जो कहा यदि विप्र यदि है पूजिए विप्र, ज्ञान वो नहीं है। विप्र माने जो पहले जो मैंने कहा उसका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में और उसका द्वितीय संस्कार भी हुआ, गायत्री मंत्र को पाया, किंतु ब्रह्म जानने वाला ये जो उसमें नहीं है, फिर भी उसको आदर करना चाहिए। क्यों? संस्कार हुआ है, गायत्री का प्रवचन, गायत्री का जप करता है और ब्राह्मणोचित गुण है, किंतु अभी ब्रह्म को अभी जान नहीं सका, अभी उसके लिए सार्थक होना है। ऐसे लोगों को भी आदर करने जो गुण क्या, वो गुण ब्रह्म को जाना दी। इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा, उनको समझना चाहिए। तुलसीदास जी के बातों को समझना सहज नहीं, बहुत गंभीर बात करते हैं। दूसरी बात, एक ही महाराज थे, उनका नाम था ऋषभ, क्षत्रिय थे, महाराज क्षत्रिय श्रीमद भागवती दास। तो उस ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें बड़े का नाम भरत था, जिसके नाम से यह भारतवर्ष हुआ। वो भारतवर्ष के इस राजा थे, इसलिए उनका नाम पड़ा भारत। बड़े गुण थे, परम भगवत भक्त थे, इनकी कथा हम लोग आपको सुनाएंगे। तो ये भरत जी एक ये क्षत्रिय हुए और 9 उनकी जो छोटे जो भाई थे ये 9 जोगेंद्र हुए। परमहंस जाति सातु से उच्चा, बहुत उनके ब्रह्म ज्ञान से दीप्त, इनकी कोई जाति नहीं, परमहंस। और एकाकी कर्म कांडीय ब्राह्मण हुए और 9 वर्षों के क्षत्रिय राजा बने। तो ये कैसा, ये पिता के ही बहुत से हो गए, ये जातियां भिन्न भिन्न, इनको भी समझना चाहिए, ये गुण और कर्म के अनुसार नहीं हुए। महाराज आप विश्वामित्र को जानते हैं, ये ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत तपस्या की, वशिष्ठ जन अंत तक ने उनको ग्रहण किया। अंत में जब उसके युग हुए तो उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, और भी बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे दूसरे जातियों से भी, जैसे कि व्यास जी को कहा, नारद जी कौन से जाति के थे, एक सूत्रानी के गर्भ से जन्मने वाले, और बतलाइए ब्राह्मणों के भी वाल्मीकि और व्यास और सबके भी गुरु। इसलिए इस प्रकार से पहले विचार किया जाता था। कहते हैं न जात्या ब्राह्मणश्च क्षत्रिय वैश्य एव न च न शूद्रो न च वैश्य म्लेच्छो भेदिता गुरु न जात्या। जाति से ही उसका पिता ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इससे जाति का निरूपण नहीं होता। केवल कौन जन कुल में जन्मा, पिता माता का विचार, पूर्व जन्मों का संस्कार, उसमें कर्मों का कैसा है, उसके लोगों के साथ में कैसा है, उसका स्वभाव कैसे उदित हुआ, ये सब को विचार करके सब जाति का निरूपण होता था। आजकल जैसा नहीं, आज जूते का कारोबार करते हैं, मदिरापान करते हैं, मांस मछली भक्षण करते हैं, ये लोग कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा जाए, कदापि नहीं। समस्त शास्त्र एक पद से इसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए गुण होना चाहिए, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही नहीं होगा यदि वो वकालत करता है तो डॉक्टर नहीं होगा, और वकील का लड़का यदि बिजनेस करता है तो वकील नहीं कहा जाएगा। इन्हें गुण कर्म का अनुसार में सब, यदि ये सब चीजें होती हैं तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पर भी होगी। यदि जाति को ही ब्राह्मण माना जाए तो मरने के बाद में लोग उसको जो जलाते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगता, यदि शरीर ही जाति है तो। यह बात ठीक नहीं। यदि कहो ये आत्मा जाति है, आत्मा भी जाति नहीं है, आत्मा का भी वो तो सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य सेवक हैं। इसलिए जातियां हमारे कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उन्नति के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिससे कि हम लोग क्रमशः धीरे 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 भगवान की तरफ में बढ़े। इस तरह से नहीं तो जात जन्म से सभी शूद्र हैं। एतत् जो वा एतत् अखर्म गार्गी विश्वास मान लोकात् प्रैति सब्रह्म। एक समय महाराज जनक के दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़े बड़े वक्ता लोग वहां पर आए, तो वहां पर एक समय महाराज जनक ने हजारों लाखों गायों को सोने के चादरों से उड़ा दिया, सोने की सींग लगा दी और सूद लगा दी, और कहा जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्राह्मण है उसको ले जाए, मैं उनको देता हूं, इसलिए आप लोग निर्णय करेंगे ब्राह्मण कौन है। सब लोग चुपचाप रहे, सवा शांत रहे। वहां पर याज्ञवल्क्य थे, कहा देखो महाराज जनक जी, जो ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण है उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, किंतु फिर भी मैं कहता हूं बटू बटू मैंने गाय को हाँक करके हमारे आश्रम में ले जाओ। जब हाँक करके ले जाने लगा वो, तो जितने ब्राह्मण बैठे थे बोले कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, प्रमाण दो, और प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो किसी तरह से प्रश्न करो तब तक उत्तर दूंगा, और जब उल्टा इधर उधर का प्रश्न है तुम्हारा सिर उठ जाएगा, ये समझ रखो, समझ बूझ करके प्रश्न करो। सबकी बोली बंद हो गई, कोई नहीं पूछ सका। उस समय एक गार्गी नाम की महिला थी, विदुषी, बड़ी वेदों पर शास्त्रों को जानने वाली, उसने कहा हमारा एक प्रश्न है, कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है, इसका उत्तर दे दीजिए। और फिर उत्तर देकर के सब गायों को लेकर के हंस गए, तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले जो वा एतत् अखर्म गार्गी अविद्या अविद्या आत्मान लोकात् प्रैति सत्सूत्र। जो इस ब्रह्म तत्व को जान करके, आत्मा को जान करके इस जगत में चला जाता है वही ब्राह्मण है, और जो नहीं जानता वो शूद्र है, जो शरीर के लिए शोक करता है वो शूद्र है। दोनों का उत्तर सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और गाय को लेकर के चले गए। इसके द्वारा भी यही प्रमाणित होता है स्वपचो भी महिमा महिमा। विष्णु भक्तो द्विजाधिका विष्णु भक्ति ही नश्यति जो अभी सपजा श्रीमद्भागवत में सपचो अपनी महिमा। यदि चंडाल का भी पुत्र कोई हो और विष्णु की भक्ति हो तो वो ब्राह्मण से बहुत उत्तम है, उत्तम है। जिस ब्राह्मण को भक्ति नहीं है, सब गुण संपन्न होने पर भी जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, वो ब्राह्मण कदापि नहीं कहा जाए। और किसी कुल में भी जन हो, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, सिंह ऋषि हैं, गौतम हैं और सब जो बतलाया है, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वो ब्राह्मणों में भी पूज्य है। इस तरह से यह प्रमाणित होता है। आजकल कुछ ऐसा प्रचार हो रहा है किंतु वो शास्त्रों के विचार से ठीक है। उसमें गुण होना चाहिए और उनका आदर भी होना चाहिए। यदि जन्म से ही ऐसा होता तो भगवान ने सिंह थे तो खंभे से निकले थे, उनकी कौन सी जाति ली जाएगी, कौन सी जाति। और कृष्ण तो गोकुल में आए थे, ब्राह्मण लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं, भोग लगा करके।
रामचंद्र
जी तो क्षत्रिय थे, बारह जी तो सुअर रूप में आए थे, उनको तो लोग भोग देकर के खाते हैं। इसलिए सब विचार कर करके सब हम लोग जाना चाहिए, गुणों का आदर होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी कोई भक्त हो उसको आदर नहीं है, जो तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण इत्यादि गुण से ही है कदापि इसका अधिकारी नहीं। किंतु ब्राह्मण लोगों का आदर होना चाहिए, यदि उसमें गुण है तो उनका निरादर था तो खबरदार मत करो, थोड़ा सा भी गुण है उनका आदर, ये हमारी भारतीय की नीति है। दूसरी बात, एक प्रश्न ये कि पूजा पाठ के अवसर पर पत्नी को अपने पति के किस अंग में बैठना चाहिए। एक प्रश्न ये है, पत्नी पूजा के समय में अपने पति के किचन में बाएं तरफ बैठेगी या दाहिने की तरफ। भाई हम लोग तो सन्यासी हैं, हमें याद ही नहीं और इस पर हम लोग विचार भी नहीं करते, तभी शास्त्रों में जो लिखा है हम उस पर विचार करके आप लोगों को समाज के वर्तमान पोजीशन से कुछ इसमें इधर उधर हो सकता है। विशेष करके यदि भक्ति है तो इसमें कोई दोष नहीं होता इधर उधर बैठने, तो भी हमारे शास्त्र में हमने देखा जो ये विचार दिया भगवान रामचंद्र जी के लिए रामचरितमानस में, नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भागम। मैं सीता और राम को प्रणाम करता हूँ, जो राम के बाएं के तरफ में सीता जी बैठे हैं और राम उस राम को कमल लोचन जो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता है, ये वाम भाग में आया। यहाँ पर दक्षिण भाग नहीं लिखा है। फिर दूसरी जगह में मानस के उपाय में, मानस में भी कहते हैं दक्षिणे लक्ष्मण, दक्षिण में रामचंद्र जी के दक्षिण में दाहिने ओर हैं लक्ष्मण जी, बाम को जानकी सुभा और बाएं तरफ में कौन है, जानकी सुभा परम मंगलमयी माता जानकी जी हैं, पुरुषो मारुति और सामने में मातृ जी अर्थात हनुमान जी इन दोनों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे रघुपुर तिलक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भी वाम अंग में ही बैठने का कहा गया। वाम भाग तो अति अनुकूला आज तक छवि निधि जगमूला, जबकि मूल समस्त लक्ष्मा ब्रह्मी लक्ष्मा रमा और उमा को लाखों लाखों को प्रकट करने वाली जो आदि शक्ति श्रीमती राधिका जी हैं, वाम भाग तो अति अनुकूला बड़ी सुंदर रूप से वहां पर सुशोभित हो रही है। बाएं अंग में यहां पर भी आया, जिसमें रामचंद्र जी का सीता के साथ में विवाह हो रहा था उसमें पूजा हो रही थी, उस समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी बैठी थी, उस समय में पितरों का पूजन और भवन इत्यादि कार्य और अपनी पत्नी का पानी ग्रहण कराएंगी, ये पूजा का समय है। तो पूजा समय के लिए तुलसी जात जी ने वर्णन किया, जनक बाम दिशि सोह सुनैना, पूजा करते समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी शोभित रही है। कैसे, जैसे उमा जी के विवाह के समय में हिमगिरी संगवती जन मैना, जिसमें हिमाचल जी अपनी पत्नी मैना उनके बाएं तरफ में बैठी हैं और विवाह का पूजा का सारा संस्कार करा करके शंकर के हाथों में पार्वती जी का पाणी ग्रहण करा रही हैं। वैसे ही यहाँ पर महाराज जनक के बाम भाग में सुनैना जी बैठ करके समस्त पूजा का आयोजन सब पूरा करके और तब राम के हाथों में पानी ग्रहण करा। इसे भी ऐसा पता चलता है, किंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं दाहिने तरफ में पूजा के समय बैठाते हैं, तो मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। यदि कहीं समाज की ऐसी रीति है, हमको कोई आपत्ति नहीं, वो अपना समाज के नियम के अनुसार में चले, किंतु शास्त्र ये कहते हैं और शास्त्र का विचार है। अब ऐसा देख करके हमारे बीच में किधर बैठाओ, यदि भगवत भक्ति हो तो किधर भी बैठो। और एक बात याद और आती है, शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो बाम भाग में बैठाते थे, सब समय में उनको सामने आसन दिया माता का, फिर बाएं तरफ में ने कभी नहीं बैठाया, और इसीलिए सती जी वो आग में जल गई। इसलिए इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के पास में कुछ जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है और 18 स्मृतियां हैं, उनमें आप लोग देखेंगे। पहले हम देखते थे, अब उन सबको देखना छोड़ दिया, अब तो हम केवल सर्व भक्ति में राधा कृष्ण की भक्ति में हम रमते हैं। इन प्रश्नों को आपने कहा था, इसलिए मैंने संक्षेप में जैसा शास्त्रों का विचार में आप हमारा किसी में हट नहीं, शास्त्रों का विचार आदमी ग्रहण करे तो अच्छा। अब मैं अपने विचारों पर आता हूँ श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत में पहले ही बतलाया गया श्री सुको वाच, ये महाराज परीक्षित बड़े विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे, भगवान की गोदी में खेले थे। जब कृष्ण जिस समय थे उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ माता के गर्भ में थे, जबकि अश्वत्थामा ने बाण मारा तो उनके गर्भ में प्रवेश करके उनको जला रहा था, उसमें भगवान उसके भीतर में प्रवेश करके और उसकी रक्षा की। वो सब समय देखा, यही तो भगवान तो नहीं जिन्होंने हमको हमारी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, परीक्षा करते। एक समय में वो कहीं अपने राज्य में विचरण कर रहे थे, अब विचरण करते 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 उनको दोपहर का समय हो गया, बड़ी जोर से प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला, पानी से छटपट करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे अपने ही राज्य में, और उसे पानी मांगा, किंतु वो ध्यान में मग्न था, समाधि में लगे, उसे शरीर का होश नहीं, भगवत चित्त अपने चित्त को भगवान में लगा दिया था। उस समय में उनके पानी मांगने पर, बार बार भी मांगने पर बेचारे वो अपने आसन से उसको के पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा हो जैसे आज लोगों का विचार है, पानी नहीं पिलाता है कोई, अस्पताल नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, रोगियों की सेवा नहीं करता, तो ये कैसा धार्मिक है। इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा उस समय में ये शायद हमको देख करके ये चुप हो गया और समाधि लगा लिया, हमसे बोलना नहीं चाहता है, हमारा निरादर कर रहा, यद्यपि बात तो थी नहीं ऐसी, किंतु उन्होंने ऐसा ही लोगों के अनुसार में सोचा, ऐसा लोग समझते हैं और इसलिए देखा जी नहीं करते, अच्छा तो इनको उपहार देना चाहिए। एक मरे हुए सांप को अपने धर्म सुखा उसके गले में लगा दिया, 3 बार ये करते और चले अपने आश्रम को, तो अपने घर पर फिर सोचा, ओहो मैंने ये गलत किया या ठीक किया, जब ये सचमुच में ये समाधि में हो तब तो मैंने बहुत बुरा काम किया, तब तो न जाने हमको कौन सा दंड मिलेगा, और यदि सचमुच में ना हो तो कोई बात ही नहीं, ऐसे ही सोचते जा रहे थे। इतने में उनका लड़के ने सुना कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लगा दिया, सुनकर के बड़ा वो क्रोधित हो गया। 5 वर्ष का लड़का नंगा बच्चों के साथ में एक नदी के तट पर वो घूम रहा था, जैसे ही सुना बड़ा क्रोधित हो गया वो बच्चा और उठाया पानी और आचमन करके और कुछ चिंतन करके मंत्र पढ़ करके कहा, जिसने हमारे पिता का ये अपमान किया है वो मालूम होता है कि राजा परीक्षित है। आज हम जो हम अपने जगह के लिए जिनको अपना रक्षक बना करके पहरादार बनाया था वो पहरादार से आज हमारे यज्ञशाला में घुस कर हमारी बिना इच्छा के हमारी इच्छा के विपरीत हमारी यज्ञशाला के चीजों को खा रहे हैं, मैं अभी उनको दंड दूंगा। समझ रहे हैं इसका? हमने यज्ञशाला के रक्षा करने के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग सुनिश्चित होकर के करेंगे, इनको अपना प्रहरी नियुक्त किया था, हमारा शासन करने वाले ये लोग नहीं है क्षत्रिय लोग, हमने इनको दिया है ये सब शासन करने का अधिकार और आज हमारी यज्ञशाला में प्रवेश करके हम ब्राह्मणों के ऊपर में ये शासन कर रहे हैं, उनको शासन देने वाले हैं, मैं आज उनको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। ऐसा करके पानी लेकर के प्रोक्षण करके जाओ, जिसने ये ऐसा किया वो सात दिन में यही सांप या कोई तक्षक सांप उसे डसेगा और मर जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। आकर के पिताजी की गोदी में बैठ गया और रोने लगा। पिताजी की का समाधि भग्न, बेटा क्यों रो रहा है, रो रहा है बतलाओ तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गले में सांप किसी ने डाल दिया? अच्छा सांप डाल दिया, देखा तो कौन डाला? महाराज परीक्षित प्यास से भूखे आए, प्यास से भूखे और उससे पानी मांगा मैं नहीं दे सका, उस समय कुछ बच्चे चंचल उनका था इसलिए सम्मान में बड़े धार्मिक राजा तो हैं। अरे बेटा तुम इतना ब्राह्मण का बिल्कुल नहीं, सहिष्णु नहीं, तुमने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, क्रोध में उनको अभी संपात कर दिया, तुम्हें सहसुनता तक नहीं है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं, ऐसा अभी संपात कर दिया। फिर बोले अपने दूसरे पटु को अपने छात्र को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को कहा वो जो मुनि है सो तो हो ही क्या क्या तर्क बढ़ा उन्हें शाखा है, जो उन्हीं थी तो हो गया, वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने साथ साथ उनको भेजा, जाओ कहा कि साथ से दिन उनको पर ये सब डसेगा, इसने जो कुछ करना है वो तैयार हो गया। सोई जो राम रची राखा तो कर तर्क बढ़ा वही चाखा, बस उन्होंने उसको कह दिया। वो जा करके महाराज परीक्षित अभी रास्ते में जा रहे थे, कहा महाराज परीक्षित हमारे गुरु जी ने ये आदेश दिया कि सातवें दिन आपको पक्ष काटेगा सांप, कोई रक्षा नहीं करेगा, उनके बेटे ने ऐसा जिससे आपका कल्याण किसमें वो की, साथ ही साथ बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, शरीर तो आज न कल अपने आप जाएगा, मैं नरक में नहीं गया, मेरा कुछ भी आत्मा की हानि नहीं हुई, मैं बहुत सुनने से सोचता था इस राज्य पाठ को छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा, किंतु समय नहीं आ रहा था, आज मेरा समय आ गया, ये हमारे लिए वरदान है, ऐसा सोच के बड़े प्रसन्न हुए और घर नहीं गए, वहीं से बेटे को राज्य भी नहीं दिया, ऐसे ही वहां से राजपाठ सब छोड़ करके मुकुट को और धनुष को सब कुछ त्याग दिया, राजवेश भी त्याग कर दिया और गंगा के समीप वहां पर आकर के गंगा जी के सामने बैठ करके और प्रायवेशन में बैठे, प्रायवेशन मैंने क्या है भूख प्यास छोड़ दिया, भूख खाना पीना और छोड़ करके बैठ गए और चिंतन करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए और साथ ही साथ में हजारों ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हो गए, 88,000 से अधिक ऋषि महर्षि न जाने कश्यप ऋषि कश्यप कश्यप से और कोई मंगोलिया से मंगल ऋषि और कोई कहां से कोई कहां से सभी लोग कैसे उस समय में पहुंच गए एक सेकेंड के अंदर में, जब बेतार था कुछ भी नहीं था, कितना उन्नत हमारा भारत का उस समय साइंस था, हम लोग उसे विकसित हो गए, हमारा वही गौरव हमें पूर्ण लेना है, यह भगवत भजन से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। बस ऋषि लोग आ गए, महाराज परीक्षित जी ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी आए हैं, उनको राज वहां पर व्यक्त भी कर रहे थे और पूछा हमारा कल्याण कैसे होगा, जिसकी आज ही मृत्यु है जरूर मरेगा उसको क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न परसों न परसों न 1000 बार मरेगा जरूर, उनके लिए क्या था सबे ये दो प्रधान है। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी सुखदेव उपाच, सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर है। अब इसका तात्पर्य मैं पीछे बतलाता हूं, एक कीर्तन कर दो।